और ऐसे निरपेक्ष शांत जो मुनि है, जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे मैं चलता रहता हूं ताकि इनके चरणों की धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं। कि महाराज आप में अपवित्रता कहां से आई, कि न जाने कितने पापियों ने मेरा नाम लिया, न जाने कितने पापियों ने मेरी शरण ली, अब उनका पाप मेरे पास रह गया, इस पाप को मैं कैसे हटाऊं, क्या उनके चरणों की धूलि से, उनके चरणों की धूलि से ये सारे पाप मेरे से दूर हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतना ही नहीं है, जो मेरे परम प्रिय भक्त होते हैं वे सब जीवों से प्रेम करने वाले होते हैं, और उन लोगों को किसी भी प्रकार से बाध्य भी किया जाए कि आपको ये विषय हम देते ही देते हैं, बाध्य भी किया जाए तो भी वो विषयों से अभिभूत नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदय में मेरी लबालब भक्ति भरी पड़ी है। देखो जो पात्र पूरा भरा हुआ है उसके अंदर एक बूंद भी आप दूसरी चीज डालो तो एक बूंद बाहर निकल जाएगी। तो जिनका हृदय मेरी भक्ति से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अब उनको कहें कि आप विषय ले लो तो वो विषय को फेंक देंगे, विषयों से अभिभूत नहीं होंगे। मेरी भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है उद्धव, जो मेरी भक्ति करने वाला है उसके भक्ति की अग्नि में सारे के सारे कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। धर्म सत्यादयोपेता विद्या व तमसान तपसान्विता मद भक्त्यापेतम आत्मानम न सम्यक प्रपुणाति ही। कहते हैं धर्म है कि विद्या है कि दूसरे गुण है, ये मेरी भक्ति के बिना किसी को भी इतना पवित्र नहीं कर सकते हैं जितनी भक्ति मेरी पवित्र किया करती है। भक्ति के अंदर भाई जब वह व्यक्ति गदगद होता है, मेरे वियोग में रोता है और कभी कभी मेरी लीलाओं का चिंतन करके हंसता है, ऐसे समय में वो मेरा भक्त है, वो संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र करता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिस प्रकार से अग्नि के अंदर सोना डालते हैं तो सोने का मैल दूर होता है, इसी प्रकार से मेरे अंदर जो भक्ति रखने वाला, मेरे में जो भक्ति करने वाला है, उस व्यक्ति के जितने कर्म के दोष हैं वो सब के सब जल करके राख हो जाते हैं, और ज्यों ज्यों उसका अंतःकरण निर्मल होता है त्यों त्यों मेरी कथाओं के सुनने का उसको एक विलक्षण आनंद मिलता है। जैसे आंख के अंदर अंजन लगाया जाए, काजल लगाया जाए तो आंख की ज्योति बढ़ती है, ऐसे ही मेरी भक्ति हृदय में आती है तो मेरे प्रति उनका प्रेम बढ़ता रहता है। और देखो उद्धव, विषयों का ध्यान करते हैं तो विषयों में आसक्ति होती है कि नहीं, इसी प्रकार से जो मेरा चिंतन करता है तो मेरा चिंतन करता है वो मुझ में लीन हो जाता है। बड़ी विचित्र बात कहते हैं भगवान, विषयों में आसक्त, विषयों का ध्यान करने वाला विषयों से आसक्त होता है, विषयों में लीन नहीं होता, लेकिन मेरा जो ध्यान करने वाला है वो ध्यान करने वाला मुझ में लीन हो जाता है। लीन होना माने केवल मैं ही रहता हूं, फिर वो ध्याता नहीं रहता, ऐसा वो लीन हो जाता है। लेकिन विषय और विषय का ध्यान करने वाला, इनमें जो भेद है वो भेद आगे तक क्या सदा ही बना रहता है। इसलिए भाई आओ, तुमको अपना मन है वो मुझ में रख देना चाहिए और मेरा ही संग करना चाहिए, मेरे भक्तों का संग करना चाहिए। स्त्रियों का और स्त्रियों के संगियों का दूर से ही संग छोड़ देना चाहिए, एकांत में बैठ करके मेरा ही चिंतन करना चाहिए। अब ध्यान देवे, ये अंतिम विधि है ध्यान की, भागवत के प्रसंग में, प्रसंग के अनुसार प्रकरण भी अंतिम है। उद्धव जी ने पूछा, हे कमल नेत्र, आपका जब ध्यान किया जाता है तो कैसे किया जाता है आप बताइए। एक तो ध्यान करने वाला ध्यान बतावे, एक आप बताते हैं, आपके बताने से और विलक्षण आनंद आता है, कैसे ध्यान करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देखो ध्यान करना हो उस समय में अपने सम आसन में बैठना चाहिए, सुखपूर्वक बैठ सके, न तो ज्यादा कड़क करके बैठे और न ज्यादा शरीर को ढीला करके बैठे, सम होकर के बैठे यथा सुखम, और अपने दोनों हाथों को गोद के अंदर रख लेवे और स्वनासाग्र कृते क्षण है, और अपने नाक के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि रखे, वहां प्राणायाम का संशोधन करे, पूरा कुंभक रेचक श्वास को ऊपर लेवे वहां रखे और फिर श्वास को निकाले, अथवा रेचक कुंभक पूरक ही माने विपर्य ने पहले रेचक कर ले है जो श्वास को बाहर निकाले, फिर धीरे 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 श्वास को ऊपर लेवे, फिर श्वास को रखे, फिर श्वास को निकाले, फिर ऊपर ले जावे, फिर श्वास को यथा सुख उसको रोक सके उतना रोके फिर बाहर निकाले। तो ऊपर खींचने का नाम पूरक है, वहां पर रोकने का नाम कुंभक है, और श्वास के बाहर निकलने का नाम रेचक है। इस प्रकार से करें। और उस समय में अपने मन से एक ओंकार का नाद करें, माने ओंकार का उच्चारण करें, वो घंटा नादम, माने जैसे घंटे की टंकार आती है उसके अनुसार ओ एक स्वर से उसको बोलता रहे। इस प्रकार से बोले और प्रणव संयुक्त जो प्राण है उसको रोकने का अभ्यास करें। ऐसा करें तो 10 कृत्व एक दिन में 10 बार करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो फिर आगे जाकर महीने भर में उसके ध्यान में बड़ा अंतर पड़ता है। ध्यान में ये देखे कि मेरा हृदय है एक कमल के समान है, उस कमल का मुख उल्टा है, और अब मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं, अब भगवान हमारे हृदय कमल में आने वाले हैं, अतः मेरा जो हृदय कमल उल्टा हुआ हुआ है, अब वो धीरे 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 उसका मुंह नीचा था वो अब उसका मुंह ऊपर हो गया है, और उसकी जो डंडी है कमल नाल की डंडी वो नीचे चली गई है। फिर विचार करें कि इसी कमल नाल के इसी कमल के बीच में एक गद्दी है, फूल के बीच में रहती है। वैसे कहते हैं कि फिर इसके अंदर चंद्रमा का, सूर्य का और अग्नि का खूब विचित्र प्रकाश है। इस प्रकाश से बीच की गद्दी है बहुत जगमगा रही है, और यहीं पर मेरे परम इष्ट देव हैं, उनके चरण विद्यमान हैं, उन चरणों के नूपुर हैं, और चरणों के ऊपर पिंडली का ध्यान करें, और फिर पीतांबर लटका हुआ है घुटनों के नीचे तक, पीतांबर लटका हुआ है, कमर में करधनी है, और वनमाला भी बहुत नीचे तक लटक रही है, कौस्तुभ मणि जगमगा रही है, श्रीवत्स का वक्षस्थल पर चिन्ह है, बहुत सुंदर यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, कानों के मकराकृति कुंडल है वो बिल्कुल समान है, दाहिने कान के और बाहिने कान के कुंडल है एकदम इतनी सीध में है जितना दाया बाया है, दाया उतना ही बाया और बाया उतना ही दाया है, इनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। और मेरा रूप रंग घन के समान श्याम वर्ण का है, पतली सी रेखा है जिसे श्री निकेतन बोलते हैं वो मेरे शरीर में देखे, शंख चक्र गदा और पद्म मेरे हाथों में है। इस प्रकार से ध्यान करें, मेरे मुकुट की शोभा उसमें जड़ी हुई मणियों की कांति दूर दूर तक फैल रही है, मेरे मुख कमल का ध्यान करें तो मेरा मुख हंस रहा है और खिले हुए नेत्र है, प्रसन्नता से मैं देख रहा हूं, और मेरे दर्शन से इतना सुंदर माने कि मेरे दर्शन से उसका हृदय खिल रहा है, ध्याता का हृदय प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि मैं इतना कमनी हूं, इतना सुंदर हूं कि देखते ही उसका हृदय खिल जाता है। सर्वांग सुंदरम, मेरा अंग है वो सर्वांग सुंदर, मैं सारे अंग मेरे सुंदर है, सुकुमार है। इस प्रकार से सभी अंगों पर अपने मन को रखे। उस समय में इंद्रियों को भी मन के द्वारा इंद्रियों को विषय से हटावे, और मन को लेकर बुद्धि भी इंद्रियों से मन को हटावे, और बड़े संयत होकर चिंतन करे, चित्त को मुझ में लाकर रख दे। न अन्यानि चिंतयेत भूये, और कोई चीज का चिंतन न करे, और ऐसे चिंतन करते हुए यदि किसी का ध्यान कहीं चला भी जाए तो हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, उस समय में चुपचाप वापस मेरे स्वरूप में मन को लाकर रख दे वे। क्योंकि ध्यान से जब मन दूसरी जगह चला जाता है तो साधक के मन में बड़ा विचार आता है, ऐसा विचार उसको नहीं करना चाहिए। शांति के साथ चित्त को वहां से हटा करके मेरे स्वरूप में रख देना चाहिए। एवं समाहित मति, इस प्रकार से समाहित मति होकर के मेरे स्वरूप का चिंतन करता है तो तो बहुत जल्दी उसका द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम है, उसका संसार के आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक प्रपंच से कर्मों से सबसे उसका मन दूर हट जाता है। इस प्रकार का ये ध्यान है। लेकिन इस ध्यान के करते करते कुछ विलक्षणताएं आती हैं, कई प्रकार की सिद्धियां उसके सामने आ सकती हैं, इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, महाराज आपकी कौन कौन सी सिद्धियां हैं? कह भाई यूं तो 18 सिद्धियां हैं, उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं, उन 8 सिद्धियों का कुछ अंश कोई लोगों में चला जाए तो चला जाए, लेकिन ज्यादा तो मेरे में ही वो 8 सिद्धि रहती है और 10 दूसरी होती हैं जो औरों में भी जा सकती हैं। उनमें अणिमा महिमा और लघिमा ये है शरीर को लेकर सिद्धि। शरीर है एकदम छोटा हो जाए, शरीर एकदम बड़ा हो जाए, शरीर एकदम हल्का हो जाए, यह है 3 शरीर की सिद्धियां। एक है इंद्रिय की सिद्धि जिसको प्राप्ति बोलते हैं, जो इंद्रियों का भोग हमसे न जाने कितना दूर है, मिलने की संभावना भी नहीं, वो भी मिल जाए, ऐसी सिद्धि आती है। और सुना हुआ देखा हुआ जितना भी हमारा विषय है वो उपस्थित हो जाए। और दूसरी बात है शक्ति प्रेरणम ईशिता, और माया को प्रेरित करके और हम किसी को वश में कर लेवे, इस प्रकार की सिद्धि होती है। गुणों में असंग रहे ये वश में करना, ये भी एक सिद्धि है। तो इस प्रकार की सिद्धियां हैं। इसके अलावा भी अनूर्मिमत्वम देहेस्मिन, देह है लेकिन भूख और प्यास है ही नहीं, बहुत दूर कहीं शब्द हो रहा है उसको भी सुन लिया जाए, मन के समान वेगवान होकर चला जाए, तरह तरह का रूप बना ले, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर दे और अपनी मृत्यु के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार, चाहे तब मरे चाहे तब न मरे, ऐसी सिद्धि होती है। देवताओं के साथ खेले और अपने संकल्पों की पूर्ति कर लेवे, ऐसी आज्ञा देवे कि जिस आज्ञा को दूसरे माने ही, इस प्रकार से सिद्धि होती है। त्रिकाल की बात जानना और सुख दुख को सबको आराम से सह लेना, उसमें अभिभूत नहीं होना, दूसरे के चित्त में क्या बात है इस बात को जान लेना। अग्नि अर्काम विषादी नाम प्रतिष्ठम्भो अपराजय, और अग्नि को भी रोक ले, चंद्रमा को और सूर्य को रोक ले, जल को रोक ले, विषादि का सेवन करे तब भी उसका प्रभाव न आने देवे, इस प्रकार से सिद्धियां होती हैं। तो भाई इन सिद्धियों में जो मेरे सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं वो अणिमा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जो मेरे महद रूप का ध्यान करते हैं वो महिमा को प्राप्त करते हैं, परमाणु रूप से ध्यान करते हैं वो लघिमा को प्राप्त करते हैं, सारी इंद्रिया में वो आत्मा है, इस प्रकार से सात्विक मन में, सात्विक मन को एक मेरे स्वरूप में स्थित करते हैं तो वो प्राप्ति सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इनको तरह तरह की सिद्धियां मिलती हैं। परंतु भाई जो आत्म कल्याणार्थी व्यक्ति है, जिसको केवल अपना कल्याण चाहिए, वो इन सिद्धियों को मेरे भजन में बाधा मानता है, बाधा मान करके इन सिद्धियों से चौंकता रहता है, डरता रहता है कोई सिद्धि मेरे पास न आ जाए। इस प्रकार से जो सावधान रहता है फिर सिद्धियां उसके पास नहीं आती हैं। देखा जाए सर्वासाम अपि सिद्धो सिद्धि नाम हेतु पतिरहम प्रभु, लोगों के सामने जब सिद्धियों की बात कही जाती है तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, चमत्कृत होते हैं, ओहो ये बात होगी। अरे भाई एक व्यक्ति सिद्धियों में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मुझसे प्रेम करने वाला है, तो मैं तो ये कहता हूं जो मुझसे प्रेम करने वाला है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि सब सिद्धियों का स्वामी मैं हूं, मैं जब उसका हो गया हूं तो फिर और बात ही क्या है। एक राजा ने कहा कि भाई कल जो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा उसको हम राजा बना देंगे। कि राजा का लड़का था नहीं, देखा किसको राजा बनावे। तब उसने कह दिया कि जो कल हमारे पास पहली बार आएगा उसको हम राजा बना देंगे। क्या अच्छी बात है। सब लोगों ने देखा कि अरे हम पहले चले जाएंगे। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त से पहले जो हमारे पास पहली बार आएगा राजा बना देंगे। ऐसा कहकर के राजा ने एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगा दी, अपने महल के चारों ओर प्रदर्शनी लगा दी, ऐसी विचित्र प्रदर्शनी लगाई, ऐसे ऐसे दृश्य रखे। अब लोगों ने देखा कि महल तो ये रहा, अभी चले जाएंगे, थोड़ी प्रदर्शनी देख लो। ये देखा वो देखा वो देखा, ये चमत्कार देखा ये देखा, ऐसे देखते देखते लोगों का समय पूरा हो गया। इनमें से सारी नगरी में से एक बुद्धिमान आदमी था, उसने न तो इधर देखा न उधर, सीधा वो राजमहल में पहुंच गया। राजा ने उसको अपने पास में रखा और देखा कि भाई सायंकाल तक और कोई नहीं आया, केवल यह व्यक्ति आया है। तो फिर दूसरे दिन उस व्यक्ति को खड़ा करके सब अपने प्रजावासियों को बुला करके सबके बीच में उससे प्रश्न किया कि भैया तुम ही पहले कैसे आए, या तुमको ये हमारी प्रदर्शनी अच्छी नहीं लगी क्या? कि महाराज मैंने देखा कि आप जब राज्य देने वाले हैं और मैं जब राजा हो जाऊंगा तो ऐसी प्रदर्शनियां हजार बार लगा लूंगा, फिर आराम से देखूंगा ना, तो आपको प्राप्त कर लूंगा, फिर इन प्रदर्शनियों से हमें क्या मतलब। इसी प्रकार से जो साधक होते हैं, जो मेरे में प्रेम रखने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि सिद्धियों के परम सिद्ध तो परमात्मा है, उनको ही प्राप्त किया जाए ना, तो फिर वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और भाई मैं तो अंदर बाहर सब जगह मौजूद हूं, सब जगह प्राणियों के वहां हूं ही, सिद्धियों को प्राप्त करना कठिन है, उद्धव मेरी प्राप्ति करना बहुत सुगम है। सुगम भी है और महत्वशाली बात भी है, सिद्धियों को प्राप्त करना कठिन भी है और इनका कोई महत्व भी नहीं है। उद्धव जी ने देखा ये बात तो बड़ी विचित्र है, भगवान सुलभ भी है और सबसे ज्यादा लाभदायक है। कहा महाराज आप तो ऊंचे नीचे प्राणियों में सब जगह है, लेकिन कहां देखें आप, कहां मिलते हैं हमको? भगवान ने कहा बस यही प्रश्न अर्जुन ने कहा था कि केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया, भाई संसार में हम कहां कहां देखें आपको। तो भगवान कह रहे हैं देखो यही बात जब अर्जुन ने पूछी थी तो उनको मैंने बताया कि संसार में जहां आपको जो कुछ विशेषता दिखे वो सब मैं ही हूं, मैं संपूर्ण प्राणियों में रहता हूं। गुणानाम चाप्यहम साम्यम, जितने गुण हैं उनमें साम्य गुण सबसे ऊंचा है, समता सबसे ऊंची है, वो समता मेरा रूप है। जितने गतिमान है उनमें गति मैं हूं, जितने गुणी है उनमें सूत्र मैं हूं, और जितने सूक्ष्म है उनमें जीव मैं हूं, अक्षरों में आकार मैं हूं, वेदों में हिरण्यगर्भ मैं हूं, मंत्रों में प्रणव मैं हूं, देवर्षियों में नारद मैं हूं, प्रजापतियों में दक्ष मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं, और यमय संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी। दसवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, उसका बहुत कुछ अंश इसमें मिलता है। तो कहते हैं ये सब जो कुछ है सो मैं ही हूं। महीने में साल में ये चैत्र और वैशाख के जो महीने ये भी मैं हूं, ऋतुओं में मधु ये वसंत ऋतु मैं हूं, और महीनों में मिक्सर मैं हूं, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र मैं हूं, कवियों में काव्य मैं हूं, स और तितिक्षा में अस्मि तितिक्षु नाम, तितिक्षुओं में तितिक्षा है वो मैं हूं। इस प्रकार से भाई सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो सके। भले ही कोई परमाणुओं की गिनती कर सकता है, लेकिन मेरी विभूतियों का कोई किसी प्रकार से परिगणन नहीं कर सकता। तो मेरी विभूति को चाहते हो, मेरे ऐश्वर्य को देखना चाहते हो, तो मन को वश में करो, वाणी को वश में करो, और उसके बाद यदि मेरी विभूतियों का दर्शन करना चाहोगे तो आराम से सब जगह तुम मुझे देख सकते हो मेरी भक्ति के कारण। लेकिन वाणी भी संयत नहीं है, इंद्रियां भी वश में नहीं है, मन भी वश में नहीं है, और फिर वो तपस्या करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तो भाई कोई घड़ा है और वो फूटा हुआ है, उसमें से जैसे पानी निकलता रहता है, इस प्रकार से उसके दान तप वगैरह सब नष्ट होते रहते हैं। इन सब की महत्ता कब है? जब इंद्रियां मन बुद्धि ये सब नियंत्रित होती है। उद्धव जी कहते हैं महाराज आप ही ने सबसे पहले ब्रह्मा को धर्म की व्याख्या सुनाई थी, और वर्णाश्रम आचार बताम सर्वेश्वाम द्विपदाम अपि, कहते हैं कि मनुष्यों में भक्ति होवे इसलिए आपने वर्णाश्रम का विभाग किया था। और ये भी महाराज कि आप ही ने पहले ये हंस रूप से धर्म की व्याख्या की है। तो महाराज इस समय में वो धर्म का थोड़ा थोड़ा लोप होता चला जा रहा है, न तो कोई इसका वक्ता रहा है, न कोई इसका आचरिता ऐसा विशेष रहा है। सभायाम अपि वैरिंच्याम यत्र मूर्ति धरा कला, ब्रह्मा की सभा में चले जाए तो वहां भी महाराज धर्म का विशेष निरूपण नहीं हो पाता है। इसलिए महाराज आप मुझे अपने भक्ति से संयुक्त जो विशेष वर्णाश्रमियों का धर्म है जरा वो बता दीजिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी के पूछने पर भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि देखो भाई उद्धव, सबसे बड़ा धर्म क्या है, हमारे धर्म का कहने का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि लोगों का कल्याण हो जाए। धर्म एष तव प्रश्नो नैश्रेयस करो निर्णाम, तुम्हारे इस प्रश्न करने से लोगों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें वर्णाश्रमियों का धर्म बताता हूं। देखो सतयुग के अंदर एक हंस वर्ण था, प्रजा उस समय में कृतकृत्य थी, इसलिए उसको कृतयुग बोलते थे। फिर त्रेतायुग आया तो उस समय में वेदत्रयी का अनुष्ठान होने लगा। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये पैदा हुए मेरे से ही, और मेरे से ही गृहस्थी वानप्रस्थ गृहस्थी और ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी पैदा हुए। ये सब बाद में फिर मेरे से ही पैदा हुए हैं। ज्यो ज्यो सतयुग के बाद थोड़ा 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 अधर्म आने लगा, त्यों त्यों फिर मैंने विधि विधान चालू कर दिया। क्यों किया? देखो ज्यादा पुलिस कब होती है, तब ज्यादा दुर्घटना की संभावना होती है, ज्यादा मर्यादाएं उच्छृंखल होने की वेला होती है। उस समय में मर्यादाओं के नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत रहती है। इस प्रकार से ज्यों ज्यों समय खराब आया त्यों त्यों विधि विधान भी ज्यादा बना दिए गए, जिसमें स्वाभाविक इंद्रियों का संयम है, तपस्या है, शौच है, संतोष है, वे सब ब्राह्मण की प्रकृति में माने गए हैं। क्षत्रियों की प्रकृति है कि स्वाभाविक रूप से जिनमें तेज है, धृति है, आस्तिकता है, और ब्राह्मण तैश्वर्यम और ब्राह्मण्यता है, और स्थिरता है, उद्योग है, ये क्षत्रिय की प्रकृति है। वैश्य की प्रकृति में आस्तिकता है, दान निष्ठा है, और दंभ रहित होना है, और अतुष्टिर अर्थयोपचयी, कितना ही धन मिल जाए उससे संतोष नहीं होता, ये वैश्य की स्वाभाविक प्रकृति है। और शूद्र की प्रकृति है कि ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की सेवा करे, गौओं की सेवा करे, और जितना उनको मिल जाए वो उतने से ही वो संतोष कर लेवे। अब बाकी रही अहिंसा है, सत्य है, ये सब वर्णों के लिए लागू पड़ता है। पहले ब्रह्मचर्याश्रम के लिए बताते हैं कि उसको गुरुकुल में रहना चाहिए, अपने जीवन यापन की जो साधन है वो बहुत सीमित रहने चाहिए, संध्या वगैरह करनी चाहिए, जो आचार्य होता है उसको मेरा स्वरूप मानना चाहिए, प्रातःकाल सायंकाल भिक्षा लाकर पहले आचार्य के सामने रख देवे और फिर वे आज्ञा देवे तो उसके बाद भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से गुरुकुल में रहे और वेदाध्ययन करे, विद्या जब समाप्त हो जाए तब गुरुवे विन्यसे देहम स्वाध्यायार्थम बृहद व्रत है, कहते हैं उसके बाद विद्या समाप्त हो जाने के बाद गुरु जी की आज्ञा से फिर वो ब्रह्मचर्याश्रम को छोड़कर के गृहस्थ में जा सकता है, अथवा वहां ब्रह्मचर्याश्रम में रहते रहते ही गुरु महाराज की सेवा करके उनके पास स्वाध्याय करके और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर ऊंचे लोक में भी जा सकता है। कहते हैं इन लोगों को शौच है, आचमन है, स्नान है, संध्या है, इनका खूब पालन करना चाहिए, तीर्थ सेवन करना चाहिए, ये तो प्राय करके सभी को करना चाहिए, ये नियम सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम। जब गृहस्थ में जावे तब उस समय में सवर्णाम अनुक्रमात अपने वर्ण के अनुसार ही स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, और वहां यज्ञ को छोड़ना नहीं चाहिए, अध्ययन को छोड़ना नहीं चाहिए, दान को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है उसको तो भाई प्रतिग्रह लेना है, वो उसके लिए लज्जा की बात है, क्योंकि ब्राह्मण का जो शरीर है वो कोई प्रतिग्रह के लिए नहीं है। क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चे है प्रेत्यानंत सुखाय चे, जब तक रहता है शरीर तब तक उसको कष्ट साधना में शरीर को रखे, ताकि लोगों के सामने उदाहरण बना रहे, शिलौंच वृत्ति से निर्वाह करे। राजा भी प्रजा से सबसे कर लेवे, लेकिन ब्राह्मण से कर न लेवे। इस प्रकार से ब्राह्मण को रहना चाहिए। और ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय अपना निर्वाह करें, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण को भी क्षत्रिय वृत्ति का आचरण ले लेना चाहिए, पर बहुत बड़ी भारी कोई आपत्ति आवे तब करना चाहिए। खड़गे नवा पदाक्रांत न स्वृत्या कथंचन है। और कभी कभी राजा को भी वैश्य वृत्ति का आचरण ले लेना चाहिए, और वैश्य को भी शूद्र की वृत्ति का आश्रय लिया जा सकता है, जब कोई बड़ा भारी संकट आवे तो निंदनीय वृत्ति को छोड़कर वो भी ले सकते हैं। इस प्रकार से भाई ये चारों वर्ण की बात है। वो ये गृहस्थी ब्राह्मण की क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात है चारों वर्णों की, कहते हैं जिसमें भी ये सबके लिए बात है कि कुटुंब में रहे तो जैसा उसको मिल जाए उसमें से संतोष करना चाहिए, धन के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए, ये संसार नाशवान है इस बात को हरदम याद रखना चाहिए। यहां भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि का जो एक जगह संगम दिख रहा है, ये वास्तव में रास्ते में चलते हुए किसी प्याऊ के ऊपर संगम हो गया, मिलना हो गया, उसके समान है। बाकी अनुदेहम व्यंतेते, अपने शरीर के चले जाने के बाद या उनका शरीर चले जाने के बाद इनका सबका वियोग निश्चित है, इसलिए ज्यादा घर में और इनमें वस्तुओं में कुटुंबियों में उलझना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति स्त्री पुत्र आदि में ममता करता हुआ इनमें उलझता उलझता मरता है उसको आगे जाकर नरकों का दुख उठाना पड़ता है। यदि कोई वानप्रस्थी होना चाहे गृहस्थ को छोड़कर तो अपनी स्त्री को अपने पुत्रों के पास में रख देवे और अपने आयु का जो तीसरा भाग है अर्थात 50 वर्ष के बाद उसको फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। कंदमूल फल के द्वारा अपना निर्वाह करें अथवा अग्नि पक्व है या काल पक्व है उसको वो खावे और हरदम ब्रह्म चिंतन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र है, दर्श है, पूर्णमास है, चातुर्मास है, इस प्रकार से यज्ञ किए जा सकते हैं, लेकिन कितना भी हो अपने शरीर के आराम के और सुख सुविधा के विषय में वह वानप्रस्थी को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जब आदमी संन्यास लेता है उस समय में अपने घर के कुटुंबी लोग ही वहां तरह तरह के उपायों से उसको रोकने की चेष्टा करते हैं। ऐसा नहीं, उस समय समझना चाहिए कि देवता लोग ही हमारे स्त्री पुत्र आदि के रूप में हमारे बाधा डाल रहे हैं, इस प्रकार से बड़े धैर्य के साथ संन्यास लेना चाहिए। संन्यासी का ये काम है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अपने दृष्टि से पवित्र होकर के ही पैर को रखे, जल को भी पिए तो वस्त्र से पवित्र करके छान करके जल पिए, वाणी भी बोले तो सत्य से पवित्र करके वाणी बोले, और कोई भी आचरण करे तो पहले मन में तोल लेवे कि क्या ये आचरण मैं कर रहा हूं ये अच्छा है कि नहीं, मेरे प्रति कोई ऐसा आचरण करे तो मुझे कैसा लगता है, यदि अच्छा लगता है मुझे तब तो ऐसा आचरण दूसरों के साथ करें, और यदि हमें अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा आचरण दूसरे के साथ न करें। इस प्रकार से वह अपने मन के अंदर सब तो विचार करके दूसरे के साथ व्यवहार करे। चारों वर्णों से भिक्षा ले सकता है, हां निंदनीय व्यक्तियों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जलाशय के पास में रहे, अकेला रहे और वहां हरदम मदभाव विमलाशय अपने अंतःकरण को मेरे भाव से युक्त रखता हुआ बिल्कुल निर्मल होकर के रहे, ज्ञान निष्ठा के द्वारा बंधन और मोक्ष को देखता रहे। वस्तुतः उद्धव बंध इंद्रिय विक्षेप है, बंधन क्या है, इंद्रियों का विषयों में दौड़ना इसका नाम बंधन है, और मोक्ष क्या है कि इंद्रियों का विषयों से संयमन कर लेना इसका नाम मोक्ष है। कोई बंधन कोई बहुत बड़ा है और कोई मोक्ष बहुत बड़ा है ऐसी बात नहीं है, केवल समझने में ही फर्क हो रहा है। देखो सन्यासी को इस जगत में कोई भी वस्तु दिखे यही देखना चाहिए कि आत्मस्वरूप है, सारा जगत आत्मस्वरूप है, तरह तरह के नाम और रूप केवल व्यवहार तक है, वास्तव में ये चीज नहीं है। इस प्रकार से जो कुछ देखा जाए सुना जाए उससे उपराम रहना चाहिए। सर्वम माया इति तर्केण, सब कुछ मायामय है ऐसा विचार करके शांत रहना चाहिए। देखो ज्ञान निष्ठो विरक्तो व मद भक्तो व अनपेक्षक है सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर है। जो ज्ञान निष्ठ हो गया वैराग्यवान हो गया अथवा जो मेरा भक्त है जिसको किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं है उसके ऊपर किसी भी आश्रम का कोई भी नियम लागू नहीं होता, विधि निषेध से वह ऊपर उठता रहता है। इतना ही नहीं विधि और निषेध उसके आचरण से प्रकट होते हैं। इतने दिन तो वो शास्त्रों के पीछे पीछे चलता था, अब ऐसा जो ज्ञान निष्ठ या मेरे ऊपर अवलंबित जो भक्त है मद भक्त है वो उसके पीछे पीछे शास्त्र चला करते हैं। कितना ही ज्ञानी हो जाए उसका हृदय बालक की तरह अत्यंत सीधा भोला होना चाहिए। बुधो बालकवत क्रीड़ेत और कुशलो जड़वत चरेत, कितना ही कुशल हो सब कुछ जानने वाला हो लेकिन एकदम ऐसे हम कुछ नहीं जानते हैं, इस प्रकार से कोई बाहर से करने की जरूरत नहीं, कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं तो पाखंड होगा क्या, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। विद्वान होते हुए भी वो उन्मत्त की तरह से बोले और बहुत शास्त्र का जानने वाला विधि निषेध सब मालूम है लेकिन फिर भी वह गोचरियाम चरे, फिर भी वह ऐसे ही चले पशुओं की तरह से रहे, यह एक जीवन की बड़ी मस्ती है उद्धव, यह एक बड़ा विचित्र आनंद है। वो वेदवाद में रत न रहे, ज्यादा वेद के पंचायती में न पड़े, शास्त्र की पंचायती में न पड़े, ज्यादा शुष्क वाद विवाद न करे। एक संतों से कहा कि महाराज जी राम राम क्यों करना चाहिए, आप राम राम क्यों करते हैं? अब वो क्यों देखें, क्यों इसको बताऊं, इसकी श्रद्धा नहीं, अच्छा भाई मेरा स्वभाव पड़ गया, आदत पड़ गई, इसलिए करते हैं। ऐसा कि अपना पिंड छुड़ाना चाहिए, शुष्क वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, न लोगों से उद्विग्न होवे, न लोगों को उद्विग्न करे, सब प्रकार से सर्दी गर्मी आदि को सहन करता रहे और ये देखता रहे कि एक ही आत्मा सब जगह स्थावर जंगम, सब प्राणी उसी आत्म तत्व में है। अपने खाने पीने की भी तो लेश मात्र भी चिंता न करें। यदृच्छया उपपन्नान, कहते हैं जो कुछ उसको यदृच्छा से मिल जाए उसका सेवन कर लेवे, और यथा वास है जैसा उसको कपड़ा मिल जाए, तथा शैया प्राप्तम भजेत मुनि, इस प्रकार से उसको जैसा मिल जाए उसमें संतोष धारण करना चाहिए। एक बात है कि नहीं तस्य विकल्पाख्या, उसके अंदर कभी भी भेद की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा ये तेरा ये अच्छा ये बुरा ये उसका ये है, ऐसा भेद नहीं होता। ऐसा भेद होता है उसको ज्ञान नहीं होता है। और तो और भाई ज्ञानी महात्मा होते हैं, तावत परिचरित भक्त श्रद्धावान अनुसूय के यावत ब्रह्म विजानियात मामेव गुरु माद्रित है, कहते हैं वो ज्ञानी बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उस मार्ग के अनुसार चलते हैं। यावत ब्रह्म विजानिया, जब तक वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं तब तक ये सब विधि निषेध पड़ता है, उसको जानने के बाद उससे बहुत ऊपर उठ जाया करते हैं। इस प्रकार से है उद्धव, जब वो मेरी भक्ति को प्राप्त करके इस प्रकार से ऊपर उठ जाते हैं, वे बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं, बहुत जल्दी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। देखो उद्धव, जो विद्या को सुन लिया है और आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा को केवल अनुमान का विषय नहीं बनाया है। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, वहां अग्नि का अनुमान है, अनुमान वहां प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ठीक है अनुमान भी एक प्रमाण है और प्रत्यक्ष की तरह से ज्ञान देने वाला है, परंतु जहां तक आत्म तत्व का ज्ञान है उसको अनुमान का विषय न बनाकर केवल उसको अनुभव में लिया है, उसके लिए सारा का सारा संसार माया मात्र है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष होता है, उसका जो ज्ञान तत्व है वो ज्ञान तत्व ही मेरा स्वरूप है, वो ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में मुझे धारण करता है। ऐसा ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर मम, ऐसे ज्ञानी महात्मा मेरे श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। उद्धव, कितनी तपस्या कर लो, कितना ही तीर्थ सेवन कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही दान कर लो और कितना ही और दूसरे काम कर लो, ये सब के सब मिलकर के भी ऐसी सिद्धि प्रदान नहीं कर सकते जो सिद्धि ज्ञान के एक थोड़ी सी कला के अंतर्गत है। इसलिए ज्ञान बहुत ऊंचा है, तुम भी ज्ञान विज्ञान हो जाओ और इसी ज्ञान को धारण करो। हे उद्धव, ये माया है, ये माया तुम्हारे उस ज्ञान स्वरूप के अंतर्गत है, ज्ञान को आच्छादित नहीं कर सकती है। शरीर का जन्म और मृत्यु ये तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं है, और भूख प्यास प्राणों का धर्म ये तुम्हारा नहीं है, तुम इन सब से अलग हो। जो आदि में है और जो अंत में है वही तो मध्य में रहता है, इसलिए शरीर आदि पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, तो अभी भी अभाव में है, और आत्म तत्व पहले भी था आगे भी है, तो अभी भी उसकी सत्ता बिल्कुल वैसी की वैसी है। उद्धव कहने लगे, महाराज बड़ा विलक्षण आपका ज्ञान है, बहुत अच्छा आपने ज्ञान सुनाया, लेकिन मुझे तो आप भक्ति सुनाओ और थोड़ा ज्ञान और मुझे बताओ कि ज्ञान किसे कहते हैं और भक्ति का क्या स्वरूप है। महाराज आज पूछ लूंगा सो पूछ लूंगा और अभी जान लूंगा सो जान लूंगा और मुझे कोई दूसरा बताने वाला नहीं। पश्यामि नान्या चरणम तुदंग्री द्वंदात पत्राद अमृताभिवर्षात, अमृत की वर्षा कर देने वाले तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त तो और कोई मेरा शरण है ही नहीं। महाराज मेरी दशा पर विचार करो कि मैं एक ऐसा हूं जो अंधे कुएं में गिर रहा हूं, जिसमें काल रूपी सांप वहां पहले से ही बैठा हुआ है, भूखा प्यासा होकर के दीनहीन होकर के इस कुएं में गिर रहा हूं, और आप बड़े दयालु हैं, आपके सामने गिर रहा हूं और आपके सामने मैं बचने के लिए हाथ ऊपर करके आपकी शरण में आया हूं, मेरी आप रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि देखो, हम तुमको ज्ञान सुनावे, हम तुमको विज्ञान सुनावे। यही ज्ञान और विज्ञान भीष्म पितामह से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था, तान हम ते अभिदास्यामि, वो मैं तुमको सुनाता हूं। ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं? कि नव एकादश पंचात्रीन भावानुभूतेषु ये नवै ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्। माने 9 और 11 20 और 5 25 और 3 28 28 तत्वों में 28 चीजों में जो केवल एक ही अन्वित वस्तु को देखता है और वो एक ही जो सब में समाया हुआ है उसका नाम ज्ञान है। 5 महाभूत है, 11 इंद्रियां है, 3 गुण है और 5 विषय है, 4 अंतःकरण है, ये सब इन सब के अंदर एक वो परब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा जो परोक्ष ज्ञान है इसको ज्ञान बोलते हैं। परोक्ष ज्ञान माने अभी तक उसका अनुभव नहीं हुआ, गुरुजनों से सुना है और शास्त्रों में देखा और उसके ऊपर विश्वास किया है, तो वो ये इसका नाम है ज्ञान, जो सब जगह वो है। और विज्ञान किसे बोलते हैं कि एतदेव ही विज्ञानम न तथैकेन येनयत्, कहते हैं वही विज्ञान होता है कब, जब उसका हम ठीक अपरोक्ष अनुभव कर लेते हैं, बिल्कुल उसका अनुभव कर लेते हैं, तब वही ज्ञान विज्ञान के रूप में कहलाता है। अर्थात सुना हुआ ज्ञान होता है, अनुभव किया हुआ विज्ञान होता है। आदि में, अंत में, मध्य में केवल एक वही तत्व है जो कार्यों में और कार्यांतरों में सब जगह है और सबके लीन हो जाने के बाद भी जो रहता है उसका नाम सत है। और वैराग्य किसे बोलते हैं कि देखा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ, इन सबसे अपना स्वरूप अलग है, इस अलगाव को समझने का नाम वैराग्य है। और ये अलगाव ऐसा विचित्र है उद्धव कि ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो भी ब्रह्मलोक में जाने वाला जो है वो जाने वाला ब्रह्मलोक से भी अलग है, ऐसा ब्रह्मलोक तक के लोगों को अपने से अलग मानना, इसका नाम वैराग्य है। भक्ति योग तो मैंने तुमको बता ही दिया है, मेरी कथाओं को सुने, मेरी पूजा करे, मेरा आदर करे, मद भक्त पूजा भ्यधिका, कहते हैं मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी ज्यादा करे वो मेरी पूजा है। मद भक्त पूजा भ्यधिका सर्वभूतेषु जन्मति, और मदर्थेषु अंग चेष्टा च, मेरे लिए ही सारी चेषा करे, मई अर्पणं च मनसे, और सब मन को मेरे अर्पित कर देवे, इसका नाम भक्ति है। और अब बड़े सूत्र रूप में बोलते हैं कि भाई देखो कि धर्म क्या है कि मद भक्ति कृत प्रोक्त है, माने जिससे मेरी भक्ति बढ़ती है उसका नाम धर्म है। ज्ञान क्या है, ज्ञान कहते हैं कि एकात्म दर्शनम, ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो अनुभव है उसका नाम ज्ञान है। वैराग्य क्या है कि गुणों से असंग रहे, संसार से असंग रहे, उसका नाम वैराग्य है। ऐश्वर्य क्या है कि अणिमा आदि सिद्धियां ये ऐश्वर्य है। ऐसे अपने आप ही जब भगवान बोले तब उद्धव ने देखा, रे ये तो सूत्र है। तब पूछा मरा यम क्या है, सम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा क्या है, दान क्या है, त्याग क्या है, विद्या क्या है, इस प्रकार से एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो भगवान ने फिर छोटे छोटे रूप से कहना चालू किया कि भाई मेरे अंदर निष्ठा रखनी इसका नाम सम है, और इंद्रियों का संयम करना इसका नाम दम है, और दुखों से किसी प्रकार से अभिभूत नहीं होना, दुखों में घबराना नहीं, इसका नाम तितिक्षा है। धैर्य किसे कहते हैं कि भाई जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसका नाम धैर्य है। अच्छा दान क्या होता है, अब देखो विचित्र बात है, भागवत कहते हैं किसी को दान वस्तु का देते हैं वो दान क्या, दंडनाश है, दंडन्यास है परम दानम। हम समर्थ हैं और किसी को हम दंड दे सकते हैं फिर भी उसको दंड नहीं देना, इसका नाम दान है। और कामस त्याग तपस्मृत है, तपस्या क्या है, तपस्या कोई सर्दी गर्मी बरसात को सहे उसका नाम तपस्या है का, ये तो सभी जानते हैं तपस्या है, फिर भगवान क्या बताएंगे। भगवान बताए विचित्र चीज कि काम त्यागस तप है, अपने कामना का त्याग करना इसका नाम घोर तपस्या है। और शौर्य क्या है, पराक्रम क्या है, किसी को दबाना कि नहीं नहीं स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त कर ले इसका नाम शौर्य, इसका नाम ताकत है। कोई कहते हैं बड़ा शूरवीर है, शूरवीर कौन है, दूसरे को जीते वो नहीं अपने आप को जीते वो शूरवीर है। कहते हैं कि धर और पवित्रता क्या है कि काम करें लेकिन कर्मों की मलिनता अपने में न आने दें। बिजली का काम करने वाले हैं, तारों में करंट है, इस ढंग से काम करते हैं कि वो करंट आवे भी नहीं और अपने बिजली में काम भी कर ले, वो निपुणता है। ऐसे ही कर्म को करें, लेकिन कर्मों का मैल अपने तक नहीं आने दें, इसका नाम शौच है। लाभ क्या है कि लाभ कोई वस्तु आदि की धन आदि की उपलब्धि हो जाना लाभ नहीं है, मद भक्ति मेरी भक्ति मिले इसका नाम लाभ है। सुख क्या है जी कि सुख कोई संसार के भोग मिले इसका नाम सुख है, ना 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 नहीं, सुख है कि दुख और सुख इन दोनों का ही नाश हो जाए उसका नाम सुख है, जहां दुख और सुख दोनों ही न रहे उसका नाम सुख है। अच्छा दुख क्या है कि दुख भाई कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, कोई किसी प्रकार से विपत्ति में फंस गया, उसका नाम दुख है कि ना उसका नाम दुख नहीं है। तो फिर क्या दुख है कि काम सुखापेक्षा, सुख की अपेक्षा रखना इसका नाम दुख है, सुख की इच्छा ना करना इसका नाम दुख है। पंडित कौन है, बहुशास्त्र को जाने वो कि ना, जो बंधन और मोक्ष को जानता है वो पंडित है, शास्त्र को जानने वाला पंडित नहीं। कहते हैं मूर्ख कौन है कि मूर्ख वो नहीं जो कुछ नहीं जानता है, वो नहीं, मूर्ख वो है जो शरीर को मैं और मेरा मानता है, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, वो मूर्ख होता है। और नरक क्या है कि तमोगुण का बढ़ जाना इसका नाम नरक है। बंधु कौन है, भाई कौन है कि बंधु और भाई बताऊं, बंधु है, बंधु है वो मैं हूं तुम्हारा बंधु, मैं तुम्हारा भाई हूं, देखो सिर्फ तुम्हारी हमारी जाति शकल सूरत सब मिलती है, बंधु रहम। शरीर क्या है कि ये घर है, ये शरीर है, ये शरीर है, गृह क्या है, घर कौन सा है कि शरीर ही घर है। अच्छा अभी धनवान कौन है, जिसके पास ज्यादा पैसा है कि ना ना गुणाढ्या, जिसके पास ज्यादा गुण है वो धनवान है। और दरिद्री कौन है कि जिसके मन में संतोष नहीं है वो दरिद्री है, दरिद्रो यस्व संतुष्ट है। और कृपण कौन है, कंजूस कौन है, जो धन कम खर्च दे, ना कृपण वो है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करे वो कंजूस है। और स्वामी कौन है, स्वामी वो है भाई कि जो गुणों में आसक्त नहीं होता है वो वास्तव में स्वामी है। हे उद्धव ये हमने तुमको बात बताई, एक बात और बता दूं कि गुण दोष दृष्टि दोष है, गुणस्तु उभय वर्जित है। किसी में गुण देखना और किसी में दोष देखना ये वास्तव में दोष है। और असली गुण क्या है कि गुण और दोष दोनों से आंख बंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उन दोनों से अलग रहे उसका नाम गुण है। ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका मतलब वो ऐसा अच्छा बुरा देखने वाले में ही कमी है, दोष उसी का है। और गुण वही है इन दोनों से ऊपर उठ जाए। उद्धव जी कहते हैं महाराज कभी कभी आप ऐसे चकराने वाली बात कह देते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि शास्त्र को देखो, शास्त्र में जिसके त्याग की बात कही है उसका त्याग करो, जिसके ग्रहण करने की बात कही है उसका ग्रहण करो, लेकिन त्याग जब तक उसमें दोष नहीं दिखेगा तब तक हम त्याग कैसे करेंगे, और किसी का गुण नहीं देखेंगे तब तक हम उसका पालन कैसे करेंगे। तो गुण और दोष तो देखना ही पड़ेगा, गुण और दोष देखना पड़ेगा तो वो दोष हो जाएगा। अभी आपने कहा फिर शास्त्र का क्या अर्थ रहेगा, को गुण दोष भिदा दृष्टिम अंतरेण वचस्तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। फिर निषेध और विधि पूर्वक जो आपने शास्त्र की रचना की है उसके अनुसार फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा ये आप हमको बताइए, क्योंकि गुण दोष भिदा दृष्टि निगमात नते स्वतः नहीं स्वतः, गुण का दर्शन और दोषों का दर्शन हम हमारी मर्जी से नहीं करते, गुण और दोष का विधान तो शास्त्र बताता है। तो हमारे मर्जी से हम किसी में दोष देखें, हमारी मर्जी से हम किसी में गुण देखें तब तो हमारे दोष है। शास्त्र कहता है कि ये त्याज्य है, ये ग्राह्य है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये नुकसान है, ऐसा करने से ये लाभ है, तो शास्त्र स्वयं गुण और दृष्टि हमारी करवा रहा है। आप कहते हो गुण और दोष करो ही मत, तो महाराज जी क्या है मेरा मन भ्रमित हो गया आपकी वाणी में। भगवान ने कहा देखो जी उद्धव जी हमारी वाणी में भ्रमित होने की बात ही नहीं है, मेरे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है। कहते हैं मेरे शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि लोगों का कल्याण हो जाए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने तीन प्रकार के योग बताए शास्त्रों में लोगों के कल्याण करने की इच्छा से, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति योग है। जो सर्वथा वैराग्यवान है विषयों से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है, जो कर्मों में रचे पचे हैं उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, और विषयों में जिनका वैराग्य नहीं हुआ उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, और जो न तो अत्यंत आसक्त है न अत्यंत वैराग्यवान है और मेरी कथा में जिनका प्रेम पैदा हो जाता है ऐसे व्यक्ति भक्तियोग के अधिकारी हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि हे उद्धव, कर्म को तभी तक करना चाहिए जब तक मेरे अंदर श्रद्धा पैदा न हो जाए, तब तक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और कर्मों को तो करे लेकिन कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो किसी प्रकार से कामना नहीं करता वो न स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा, न वो अच्छा, न तो वो पाप करेगा और न वो अच्छे कर्म को पुण्य की भावना से स्वर्ग की कामना से करेगा, इसलिए वो नरक और स्वर्ग में नहीं जाएगा। नरक और स्वर्ग में नहीं जाएगा तो फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ज्ञानम विशुद्ध मापनोति मग्धिम मद भक्तिम वा यदिच्छया। जो यहां अपने धर्म में रहता है और किसी प्रकार की कामना नहीं करता है वो विशुद्ध ज्ञान को या मेरी भक्ति को जिसको भी प्राप्त करना चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। ये मानव जीवन में हो सकता है उद्धव। इस मानव जीवन की अपेक्षा स्वर्ग के प्राणी भी करते हैं। नरक वाले तो बेचारे चाहते ही हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाता, क्योंकि वो दुखों में पड़े हुए हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं। लेकिन उद्धव, ये स्वर्ग में रहने वाले भी मानव शरीर चाहते हैं। क्यों? कि ये मानव शरीर है, ज्ञान और विज्ञान इसी से ही संभव है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि स्वर्ग की आकांक्षा न करे। न नरे स्वर्गतिम कांक्षेत, स्वर्ग की आकांक्षा न करे। नरक की तो खैर करता ही कौन है, करना करने से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब ज्ञान और विज्ञान में लगा हुआ, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर इसको यह भी याचना नहीं करनी चाहिए कि आगे मुझे मनुष्य बनावे। क्यों याचना करें, शरीर की क्यों याचना करें? उसको मनुष्य शरीर की भी इच्छा न करनी चाहिए। ऐसा जो विद्वान व्यक्ति होता है वो बिना किसी प्रमाद के अपने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको पूरा कर लेता है। कर लेना चाहिए उद्धव, नहीं तो ये यमराज जी के दूत हैं, रात और दिन ये सब उनके दूत हैं, ये हमारी आयु को काट रहे हैं। इसलिए मानव शरीर एक ऐसा जहाज है, इसमें बैठे हुए हम लोग गुरु महाराज रूपी हमारे इस नाव को खेने वाले हैं। इसलिए इसको प्राप्त करके और मेरी कृपा रूपी वायु चल रही है, ऐसे समय में संसार रूपी सागर से जितना जल्दी पार हो जाओ तो पार हो जाओ, नहीं तो भाई नहीं पार होगे तो आत्महत्या जैसा पाप लगेगा। अपने जितने सामने विषय इनसे वैराग्य कर लो और अपने मन से ध्यान का अभ्यास करो। हो सकता है ये मन इधर उधर जावे तो भाई प्राणों को जीत करके, इंद्रियों को जीत करके मन को वापिस सत्व संपन्न बना करके अपने वश में कर सकते हैं। योगी को चाहिए कि जैसे घोड़े को वश में करते हैं पुचकार करके, ऐसे मन के साथ जोर जबरदस्ती से नहीं, बड़े प्यार से इसको हम वश में कर सकते हैं। सांख्ये न सर्वभावानाम प्रतिलोमानुलोमत भाव अप्यय अनुध्यायत मनो यावत प्रसीदति। कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मन को हम समझा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज का कहां कहां तक संबंध है। अनुलोम प्रतिलोम सभी विधियों से हम जान करके हम हमारे मन में वैराग्य रख सकते हैं। ऐसा करते करते भी यदि कहीं कोई प्रमाद से कोई निंदनीय कर्म हो जाए तो जिस साधन में लोग लगे हुए उसी साधन को बढ़ाना चाहिए। कहीं कोई हमारे द्वारा गलत काम हो जाए, साधन में लगे हुए गलत काम हो जाए, सोचना चाहिए साधन की कमी से ही ये गलती हुई है, हमारे साधन को बढ़ाना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो देखो ये जो गुण मैंने बताया शास्त्र में, क्या बताया कि स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तित है। अपने अपने कर्तव्य कर्म में निपुण रहने के लिए मैंने गुण की व्यवस्था की है। और गुण दोष विधाने ने संगानाम त्याजने छया। दोष का विधान जो मैंने बनाया है वो किसी में दोष देखने के लिए नहीं बनाया, मैंने त्याजने छया उसके त्याग की इच्छा हो जाए इसलिए मैंने विधान किया है। जिसकी मेरे कथा में श्रद्धा हो जाए, मुझ में प्रेम हो जाए और विषयों को वो दुखात्मक समझ ले, लेकिन फिर भी यदि कभी विषयों में सुख की प्रतीति हो भी जाए तो कहते हैं ऐसे सुख के अंदर ऐसा सुख का भोग करते हुए भी उसके परिणाम में दुख समझता ही रहे, उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाएंगी, सारे कर्म उसके भस्म हो जाएंगे जो हृदय में विराजमान मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और हे उद्धव, मेरी भक्ति को प्राप्त करने वाला होता है वो स्वर्ग और अपवर्ग इनमें से किसी से ही वो इनका मतलब नहीं रखता है। नहीं किंचित साधवो धीरा भक्ता ये एकांतिनो मम वांछन्ते भी मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम। मैं मेरे भक्तों को कहता हूं कि चलो भाई हम तुमको मुक्ति दिलावे, हम तुमको कैवल्य पद दे देवे, लेकिन वो न वांछन्ति मुगति निरादरी भगति लुभाने। वो उनको मुक्ति नहीं चाहिए, कैवल्य पद नहीं चाहिए, कोई लोक नहीं चाहिए, नहीं नहीं उनको तो केवल मेरा प्रेम चाहिए। अब बताओ ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिनको मेरे अतिरिक्त और कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वे सब बुद्धि से परे वे महापुरुष सब जगह समचित्त वाले होते हैं। ऐसे लोगों के मन में गुण दोषोद्भवा गुणा, गुण और दोष से उत्पन्न होने वाले गुण कभी उनको अभिभूत करेंगे नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं देखो जो मेरे मार्ग को छोड़ करके माने भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग है इनको छोड़ करके विषयों में सेवन करते हैं उनको तो भाई दोष का मुकाबला उनको तो दुख का मुकाबला करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को क्या करें कि अपने अपने अधिकार के अंदर रख करके और दोष बता करके और उनका उनका दोष से अलग करना, यानी जिनमें दोष है उनसे उसको अलग करके परमात्मा में लगाना, ये हमारा तात्पर्य है। इसी तात्पर्य से हम वस्तु की शुद्धि अशुद्धि बताया करते हैं। किसी की वस्तु जल, किसी वस्तु की शुद्धि जल से होती है, किसी की मंत्र से होती है, किसी की और चीजों से होती है, इस प्रकार से शुद्धि अशुद्धि का भी नियम है। यतो यतो निवर्तेत, जिस प्रकार से ये मनुष्य जिन जिन से निवृत्त होता चला जाता है तब उसके अंदर शोक और मोह सब नष्ट होते रहते हैं। देखो यदि ये निवृत्त नहीं होगा और विषयों में रहेगा इसका मन तो संग हो जाएगा, संग से विषय की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, विषय प्राप्ति की इच्छा में बाधा पड़ती है तो कलह पैदा होता है और कलह जब बढ़ जाता है तो क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है तो तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है तो फिर भाई कर्तव्य अकर्तव्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जितनी ज्यादा शुद्धि रखे उतना ही अच्छा है। नते मामंग जानन्ति हृदयम हृदयस्थम हे इदम यत उक्त शास्त्रा यश त्रिपो यथा निहार चक्षुष है। देखो जो विषयों में लगे रहने वाले हैं, अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, ऐसे जो जानने वाले लोग हैं वह लोग कर्म के अंदर ही रहते हैं, प्राण परायण होते हैं, वे मेरे मत को नहीं जान सकते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु स्वर्ग में जाकर के भी स्वर्ग से वापिस आएंगे और स्वर्ग में वापिस आकर के वे तरह तरह से दुख पाएंगे। और वे क्या करते हैं कि वेदों में जो पुष्पित वाणी है उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, ये कर्म करो और ये फल मिलेगा, तो ये आकृष्ट करने वाली जो वाणी है उसके अंदर वे आबद्ध हो जाते हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषया, कहते हैं वास्तव में वेद का तात्पर्य तो मेरा स्वरूप बताना है और परो ऋषियों ने मेरे ही स्वरूप को बताया है और परोक्ष रीति से बताया है और परोक्षं च मम प्रियम, और मुझे परोक्ष ही प्रिय लगता है। इस प्रकार से मेरा शब्द ब्रह्म है, अनंत है, अपार है, दुर्विगाही है, समुद्र की तरह से बड़ा गहरा है, तो वही शब्द ब्रह्म लोगों के अंदर अनहत नाद के रूप में मेरे पास है, वो मेरे स्वरूप में सब लोगों के पास रहता हूं। जिस प्रकार से एक कमल के अंदर एक पतला सा तार रहता है, उस प्रकार से सब के अंदर मैं स्फोट रूप से विद्यमान रहता हूं और उसी से ही सब अक्षर पैदा होते हैं, उससे गायत्री आदि छंद पैदा होते हैं, उसी से ही सब पैदा होते हैं। तो मेरे कहने का आशय यही था कि वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा गुण और दोष का विधान है, यह किसी वस्तुगत गुण और दोष को बताने तक सीमित नहीं है, उसके द्वारा कल्याण हो जाए इसके बताने में मेरा तात्पर्य है। उसके बाद अब उद्धव जी पूछते हैं कि महाराज कई तो लोग कहते हैं कि संसार में 28 तत्व हैं बनाने में, कोई कहते हैं 25 है, कोई कहते हैं 26 है, कोई कहते हैं 7 है, कोई कहते हैं 9 है, कोई कहते हैं 16 है, ये क्या बात है? जो वास्तविक तत्व है वो तो अपनी संख्या में ही होंगे, ये संख्या का भेद कैसे हो गया? भगवान कहते हैं देखो पर प्रकृति के विषय में जो जितना कहेंगे उतना सब यथार्थ है। क्यों? कि बहुत से ऐसे हैं जो अलग अलग करके सबको बताते हैं कि प्रकृति है, महान है, तीन प्रकार का अहंकार है, फिर सात्विक अहंकार से मन और देवता बनते हैं, राजस से इंद्रियां बनती हैं, प्राण बनते हैं, तामस से पंच महाभूत बनते हैं, पहले पंच तन मात्राएं बनती हैं, फिर पंच महाभूत बनते हैं। एक एक को गिनाएंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, और कोई थोड़ों को गिना देंगे, कार्यों का कारण में अंतर्भाव कर देंगे तो कोई किसी प्रकार से बात नहीं होगी। इस प्रकार की बात है। उद्धव जी पूछते हैं कि महाराज प्रकृति और पुरुष दोनों बिल्कुल अलग अलग आप बता रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि प्रकृति तो पुरुष के आश्रित है और पुरुष प्रकृति के आश्रित है। अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न विधातयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को हम अलग अलग कैसे माने? क्योंकि जो कुछ हमारे देखने में सुनने में समझने में आता है वो प्रकृति से युक्त जो चैतन्य वही आता है। तो प्रकृति और ये प्रकृति है और ये पुरुष है, इन दोनों को अलग अलग हम समझे कैसे? प्रकृति में तो आत्मा घुस गई, आत्मा में प्रकृति घुस गए तो कैसे समझा जाए? तो भगवान कहते हैं देखो उद्धव, प्रकृति में ये पुरुष कभी घुस नहीं सकता है और पुरुष में प्रकृति कभी घुस नहीं सकती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग है महाराज? कि देखो आकाश के अंदर रहने वाला सूर्य है, वो सूर्य जल के प्रतिबिंब में दिखता है और आंखों के अंदर जो सूर्य है उसमें वो भी एक सूर्य है और जिस रूप को हम देखते हैं उसमें भी सूर्य है और आकाश में जो सूर्य है वो भी सूर्य है, लेकिन उस आकाश के सूर्य का प्रकाश ही नेत्रों में आ रहा है और आकाश का जो सूर्य उसी का प्रकाश रूप में जा रहा है। तो आकाश का सूर्य जैसे अलग है, ये दूसरे ये सब आपस में मिले हुए हैं, ऐसे ही प्रकृति की जितनी इंद्रियां मन बुद्धि आदि ये हैं और विषय ये सब बदलने वाले हैं और इन सब को जानने वाला जो है वो नहीं बदलने वाला है, उसी का नाम पुरुष है और बदलने वाले का नाम ही प्रकृति है। आत्मा सबको जानता है उसको भी जानता है, नहीं है उसको भी जानता है। और देखो कई कई तो लोग यहां तक आपस में विवाद करते हैं कि भाई आत्मा और प्रकृति मिलकर के